நமஹ. ஓம்காரம் பிந்து சயத்தம் நித்தம் தியாயந்தி யோகினா காமணம் மோக்ஷம் செய்வ ஓம்காராயம். ஜீவஹிம்சா பரமோ தர்ம கீ. மானுபாவம் ஆச்சாரிய உமா சுவாமினே உத்தம் இன் தஸ் தர்மோ கே நாமோ கே பிராரம்பே ரக்கா ஔர் அந்த மே தர்மா ஏக வச்சன் ரக்கா. ஜோ அப்னே ஆப்மே க்ஷமா பூர்ண நஹி ஹை இஸ்ஸே சித் ஹோதா ஹை அபூர்ண ஹை, இஸிலியே மந்த்ரோ மே பீ க்ஷமா உத்தம் தர்மாங்கன் மே ஏக அங்க மாத்ர ஹை தர்ம கா, இஸ்லியே ஏக வச்சன் கா பிரயோக் கியா. एक श्रमण संस्कृति के आचार्यों की विशेषता यह रही, जजमेंट को सुनने के लिए किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, उसी सूत्र में उन्होंने अंत में जजमेंट दे दिया. उसी में तत्व का प्रतिपादन करो तो वो तो बोले साहब इसका अंत क्या है, इसका सार क्या है, पूछने चले जाना पड़े. तो उन्होंने कहा धर्महा एक वचन दे. आपको मैं शुरुआत में थोड़ा सा तीन बातों का परिचय करा दूं, तीन विषयों अलग अलग, क्रोध मान माया लोभ, इन चार का कथन आयुर्वेद शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्र में अलग अलग कथन किए हैं. आयुर्वेद शास्त्र कहता है, जो श्रीनगर के विश्वविद्यालय के एक शर्मा है, उन्होंने इस क्रोध मान माया लोभ पर और स्वतंत्र चिंतन करके आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर उन्होंने लिखा है. उनका कहना है आप ये इसको यहीं तक सिद्धांत के साथ मत ली गई, पित्त प्रकृति वाला आदमी जो होगा वह क्रोधी होगा, ये आयुर्वेद शास्त्र का जजमेंट है. वात प्रकृति जिसकी होगी वो मान कषाय वाला होगा, और कफ प्रकृति वाला होगा वह लोभी होगा, और तीनों की विषमता होगी वह मायाचारी होगा, और तीनों नहीं होगी वह संता भाव. यह आयुर्वेद शास्त्र का कहना. आप लोग इसको जहां के वहीं रखिए संबंध, मैं आपको अध्यात्म की तरफ ले जाऊंगा. तो शुरुआत में कुछ यहां मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को ही तो हमें पढ़ाना है, आप लोग तो सब बड़े लोग तो सब बहुत विद्वान हैं. ये हमारी सार्वजनिक सभा की मुसीबत ये है, यहां पढ़े अनपढ़ और छोटे से छोटे से सभी लोग धर्म को जानने वाले सब लोग हैं, तो सबको शुरुआत से हमें आई से लेके पढ़ाना पड़ेगा. बहुत ऊंची बात तो हो तो साहब यहां तो समझ में नहीं आ रही है, और मामूली बात को साहब ये तो हम रोज ही सुनते हैं, तो मेरी मुसीबत है बहुत बड़ी. तो महानुभाव, तो ये आयुर्वेद शास्त्र का अपना सिद्धांत है. अब चलिए दूसरी बात, जो ज्योतिष शास्त्र है वो क्या कहना है. ज्योतिष शास्त्र का कहना है क्रोध जो है वो मंगल ग्रह के कारण है. क्रोध क्या है, मंगल ग्रह, जहां प्रबल होता है तो वो क्रोधी होता है, और मान कषाय जो है वह सूर्य ग्रह जिसका ये होता है उसके लिए होता है, और मायाचारी जो है वह शनि ग्रह के कारण होता है, और लोभ जो है वह राहु है, क्योंकि राहु जो खा जाता है ना उसको, चंद्रमा को सूरज को खग्रास अंधेरा कर देता है, और लोभी आदमी को जो है वो खग्रास कर देता है. इसीलिए आप लोग दुकानदार दुकान के ऊपर लिखते हैं शुभ और लाभ, बोले हमारा जो लाभ है वह शुभ हो अशुभ नहीं हो. तो ये बताते ये लोभ कैसे अशुभ है, ये अशुभ का भंडार. अब चलिए आप क्रोध मान माया लोभ, इसको आचार्य ने मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के जीवों के खास तौर से बात बताई. अनंतानुबंधी क्रोध, और इसके आचार्य ने 16 भेद भी किए. इसके तो लाखों संख्या में कारिकाएं आचार्य ने भगवान की वाणी में अंकित थे, परंतु गुणधर आचार्य के पास कुल 180 गाथा बच गई, जिसको कषाय पहुड़ गए, और उस पर टीका लिखी वीरसेन आचार्य ने. अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग प्रत्याकरण प्रत्याकरण संजोल उसके भेद किए. आत्मानुशासनकार ने कहा जिस सरोवर में मगरमच्छ होगा तो वहां मछलियां शांति से घूम नहीं सकती, उस प्रदेश में तो हमारे आत्मा में ये जो कषाय रूपी मगरमच्छ जब तक घूम रहा है तो आत्मा के जो गुण है वो हमारे आत्मा के अंदर गुण जो है क्षमा इत्यादि वो विचरण नहीं कर सकते। इसीलिए हृदय को सरोवर माना, कलश में भी माना अमृतचंद्र ने और गुणभद्र ने भी माना। उन्होंने गुणभद्र ने कहा हृदय सरसी यावन निर्मले अस्य त्याग वसति खलु कषाय चक्र ग्राहक। और इसी तरह से हृदय सरसी तुम सा पुद्गला भिन्न धम, हृदय को सरोवर माना। क्यों सरोवर माना और जल का ही क्यों उन्होंने दृष्टांत दे दिया कि जल अपना शीतल गुण कभी नहीं छोड़ता, चाहे तो बर्तन में रखकर अग्नि पर रखते हुए पानी उबल रहा है तब भी उसने शीतल गुण नहीं छोड़ा। इसके लिए क्या प्रमाण है कि अंगीठी के ऊपर वो पानी डाल दीजिए तो अग्नि बुझ जाएगी, यदि उसमें शीतल गुण नष्ट होते तो आग कैसे बुझेगी। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं साहब ये अनंत शक्तिशाली आत्मा कैसे इस बंधन में पड़ा हुआ है, कैसे माने हम कि ये अनंत शक्तिशाली है। मानवाह तीन लोग के नर नारक आदि पर्याव में भ्रमण करके आने के बाद भी, इतनी पिटाई के बाद भी अपने चैतन्य वत्व को नष्ट नहीं हुआ, ये शाश्वत पना सब जो उसका गुण है इसी से सिद्ध होता है वह अनंत शक्तिशाली है। यदि अनंत शक्तिशाली नहीं होता वो खत्म हो जाता, नर नारक आदि पंच परावर्तन में इतने घूमने के बाद भी वो अपने अस्तित्व को जो का त्यों चैतन्य जिसको गुण कहते हैं चेतना लक्षणों जीवा। बात यह है भारत में जितने धर्म ग्रंथ पैदा हो गए लिखे गए साहित्य उतना संसार में कहेंगे, क्यों ऐसे किया जाए। और क्षेत्रों में तो थोड़े थोड़े एक एक धर्म ग्रंथ तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसे लड़का होता है उसको वो थोड़ा सा खराब आदत वाला तो उसको बार बार बाप कहता देख लेना तुझे मैं ये कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर ज्यादा ज्यादा कि लोगों की ऐसी भावनाएं होती गई, इसीलिए यहां बार बार हमारे आचार्यों ने उसको संबोधन करने के लिए ग्रंथ लिखती चली गई अपने अपने भाषाओं में। ये मन बड़ा विचित्र है। क्रोध ये बहुत खतरनाक है और उसमें भी अनंतानंद मिथ्यात्व की तरफ ही ले जाता है और अनादि से ये जीव करते हैं। क्रोध में कुछ अव्यक्त भी होते कुछ व्यक्त भी होते। क्रोध से बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ी सी इससे भी आप व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं और क्रोध ही आदमी स्वयं और दूसरे को दोनों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हर क्षेत्र में जो शांति और क्षमा को स्थान दिया गया वो बहुत ऊंचा है, व्यवहार में हो या कहीं भी। मान भाव अनंतानुबंधी क्रोध के लिए आचार्यों ने पत्थर की लकीर का दृष्टांत दिया, जैसे वो नहीं मिटती है कि अनंतानुबंधी क्रोधी जीव अनंत पंच परावर्तन में भ्रमण करेगा, नुकसान दूसरे का नहीं स्वयं का ही, अपने आत्मा के गुणों का ही नुकसान होगा। दूसरे का नुकसान करे या न भी करे पर उसका खुद का अपने आत्मा का नुकसान। आचार्य इस जीव के स्वभाव के साथ समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो आश्रव होता है जिसको सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं वह कषाय है, आत्मा के गुणों को घात कर देता है, आत्मा को ढका देता है। 11, 12 और 13 गुणस्थान में तत्वार सूत्र के अंदर आचार्य ने कहा हिरण्यपताश्रव, उससे पहले हिरण्यपद आश्रव नहीं माना गया, सांप्रदायिक आश्रव माना। मिथ्या दृष्टि जीव जिसके विपरीत अभिनिवेश विपरीत श्रद्धा ने संसार के अंदर, जब उसकी श्रद्धा ही विपरीत है जो उल्टे मार्ग पर ही चल रहा हो तो वह स्वयं का ही नुकसान। और इस क्षमा भाव को खोजने के लिए शास्त्र में नहीं खोज रहे, शास्त्र तो दर्पण के समान है, दर्पण में चेहरा देखते तो काला यहां है तो दर्पण में ये दाग है कहने से वो नहीं मिटेगा, उसको कपड़ा लेके पूछना पड़ेगा। तो शास्त्र तो ये कहता है कि अपने में खोजो, हम जो कह रहे हैं हम में मत खोजो, कि हमने खोजते खोजते अनंत जीव और अनंत भाव में परिभ्रमण करते रहे, परंतु उन्होंने यहां खोजा नहीं, यहां खोजा। इसमें तो बहुत चीजें मिलती है शास्त्रों में। अंत में उन्होंने कहा कि खोजना यहां, खोजना इसमें नहीं, ये तो साधन है, साध्य अंदर है। तीर्थंकरों ने यहां नहीं खोजा, यहां खोजा। तीर्थंकरों ने यहां अंदर जीता, बाहर नहीं जीता। बाहर तो शत्रुओं को जीतने वाले बहुत लोग हैं, परंतु अंतरंग। इसलिए जो क्रोध है वह आत्मा के अपने गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए क्षमाधारी जीवों के बारे में भागवत में कहा कि कृत युग में चतुर्थ काल में संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दांता तिक्षवा आत्मा राम समुद्रश प्राय से श्रमण जना। ये श्रमण तपस्वी कृत युग में और तितिक्षा इत्यादि को परिपालन करने वाले, कृतयुग का जब 11वां अध्याय में वर्णन किया श्रमण मुनियों का, तो उन्होंने कहा यही लोग कृतयुग में थे और तपी तप था कृतयुग में और कुछ नहीं। काई के लिए तप करने के लिए, बोले इन क्रोध कषाय को जीतने के लिए, और इन्हीं की संख्या थी बहुलता और किसी की। आप जब स्वयं क्रोध नहीं पसंद करते हैं तो आप दूसरे के लिए कैसे ये कर सकते हैं, और दूसरे का क्रोध पसंद नहीं करते हैं तो स्वयं भी नहीं क्रोध कर सकते। तो उत्तम शब्द जो लगाया वह इसलिए लगाया कि आप लोग रोज ही कहते हैं कि उत्तम से उत्तम चीज ले आना बाजार से, सब्जी हो और बोले उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी चीज। बोलते क्षमा में भी अच्छी से अच्छी क्षमा, लौकिक व्यवहार में क्षमा तो नित्य चलते हैं, और क्षमा को समझने के बाद जैसे घास है सूखा, वहां यदि अग्नि गिर जाए तो जलती है, और जब घास नहीं वहां अग्नि गिर जाए तो वो जलती नहीं है, वो बुझ जाती स्वयं। यदि सामने वाला क्रोध करते हुए स्वयं ये हो जाए तो अपने आप क्रोध करते करते वही फट के बैठ जाएगा। जब भगवान महावीर उज्जैन पहुंचे और स्मशान भूमि में जाके तपस्या साणु विद्यार्थी वहां जितने थे उन्हें कहा हमारे तो स्मशान भूमि कब्जे करने आए, चलो सब देवी देवता को लेकर उन्होंने उपसर्ग शुरू कर दिया, बोले करो उसको भगा देना। तो बिल्कुल सुमेर बरो जैसे थे खड़े, नाना तरह के उपसर्ग नाना तरह की आवाज विकृत रूप धारण करने के बाद भी तिल तुष मात्र में भी उन्होंने कोई विचलित नहीं कर सकता। और जाके वो क्रोध करता बहुत करता बस थक जाए तो वही जाके पत्थर पर बैठ जाता हाफते हुए, वो फिर दूसरे को भेजता सब हाफ हाफ के प्रातः काल तक सब बैठ गए साहब, ये तो कुछ जा भागता नहीं कुछ डरता नहीं, इसकी घुंघरू बाल भी हिल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा साहब हमें क्षमा कर दे, हमें गलती होगी उन्होंने। तो इसलिए कमठ वो कमठ नहीं है, कमठ कमठ यहां अंदर है। कमठ ने कितना अवसर पार्श्वनाथ पर किया, पार्श्वनाथ ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, कमठ ने अपने को नहीं छोड़ा, क्या विचित्र लीला है। कमठ ने अपने तिल तुष्मात्र अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और इसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। आप लोग जानते हैं ना कि भैया कोई नदी में एक बिच्छू गिरने से डूब जाए, इसलिए साधु ने उसको उठाया और वो डंक मारता था। एक आदमी ने कहा अरे तुम भले आदमी ये डंक मार रहा है, बोले वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। क्षमा इसकी चर्चा जितनी मीठी है उतने इसका अनुभव बड़ा कड़वा है। अनुभव कैसे, क्षमा का नहीं क्रोध का, अक्षमा। क्षय जो है वो क्षय कर रहा है, आत्मा के गुणों का क्षय करते चले जाता है। इसलिए मां जो है वह रक्षक होती है, तो आत्मा के रक्षक, इसीलिए मां शब्द प्रयोग किया। वहां मां जैसे प्रारंभिक दूध पिला के उस बच्चे को पुष्ट करती है, तो इन आत्मा को क्षय से बचाने के लिए कोई है पुष्ट करने वाले तो मां है। तो ये क्षमा धर्म जो है मां है, इसलिए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा मिथ्यात्व से रही सम्यक से सही। और क्षमा हमने इसको क्षमा कर दिया उसको क्षमा कर दिया, ये तो लौकिक है, व्यवहारिक है, राजनीतिक में भी चलता, धर्म सामाजिक में भी चलता। जा रहे पैर लग गया साहब क्षमा कर देना, मैं भूल छो गई, मायाचार से भी क्षमा होते हैं, नाना तरीके होते हैं, पर यहां तो कोई संगीत राग था। और तीर्थंकरों ने इतने क्षमा भाव, क्षमा के तो हम संसार के अंदर लौकिक पारमार्थिक सभी दृष्टि देखते हैं। जब फांसी पर चढ़ाया ईसा मसीह को तो अनुमेन लाइफ ऑफ जीसस बाय डॉक्टर नोटोविचेक रशियन लेखक ने 85 साल पहले किताब लिखा, उसमें लिखा अलख कोलों में साक्षात है। हे भगवान ये क्या कर रहे हैं जान नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से इनको क्षमा कर दे। ये क्या कर रहे हैं नहीं जान रहे, अज्ञानता से कर रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से इनको क्षमा है। और ये कह के उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। और नारायण श्री कृष्ण जब पैर पर पैर रख के सो गए थे और बाण उन्होंने जरे ने छोड़ा लग गया हिरण समझ के, और पास जाता है तो नारायण तो बहुत घबरा गया, कांपने लगा और माफी मांगने, बल्कि उन्होंने कहा तू स्वर्ग लोग जा, मेरा आशीर्वाद है, क्षमा है, परंतु तो एक मिनट भी मत रुकना। बोले क्यों, बलराम आएगा तो तेरे पर उपसर्ग करेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नारायण श्री कृष्ण के मन में जिसने बाण मारा, भावी तीर्थंकर होने वाले के परिणाम यूं नहीं होगा तो कैसे होगा। क्षमा अपने आप में ये इतना बड़ा पूर्ण धर्म है कि क्या कहें। आज विश्व के अंदर वकीलों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया है, सारे यूरोप खंड में भी और भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, कि ये फांसी सजा बंद हो जानी चाहिए। शुरू आंदोलन, उसके पेपर चल रहे हैं, उसका अखबार भी स्वतंत्र रूप से प्रचार कर रहा है, बल्कि फांसी सजा बंद होनी चाहिए। क्यों, इसके आशा दर्शनी ने भी जजमेंट दिया है और वो वकील लोग भी यही कहते हैं। आशा सूरी ने कहा कि वे सांप को क्यों मार रहे हो, बोले साहब वो काट खाए तो हम मर जाएंगे, तुम जो मरने को जो बुरा समझ रहे तो उसको मार रहे, तुम अपने सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रहे हो। मरना जिसको तुम बुरा समझते हैं और वो काटता है तो बुरा करता है, तो तुम भी उसको काट रहे हो, तुम भी बुरा कर रहे हो, तुमने उसमें फर्क क्या है। तो इसी प्रकार से वकीलों का कहना है, जिसने मारा बस उसने शस्त्र से मारा और तुम कानून के शस्त्र से मार रहे हो, बोले तुमने उसमें फर्क क्या है जजों में और कानून में और उसमें। ये दलील दे रहे तो महानुभाव, मैं और एक बीच में बात कहकर फिर चलू। मैं जब 1964 में जयपुर में था, एक बहुत बड़ी किताब फांसी की सजा किताब जब से शुरू हो गई और विक्टोरिया महारानी से लेके उसमें चले आए थे, विक्टोरिया महारानी सत्ता पर जब आई उसके सामने पहले पहले एक फांसी की सजा कोई रखी भी, आपको सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर करते समय फोटो खींचा, उसका चेहरा उतरा हुआ और उस दिन उसने खाना नहीं खाया, बताओ उसने कुछ भी नहीं किया, केवल कागज पर एक साइन कर दिया। तो जयपुर में 64 में हमारे जब जेल में भाषण विश्वधर्म इन्होंने रखा जो अलीगढ़ वालों ने, उनकी शाखा वालों ने, तो हम जेलर से पूछा कि भाई तुम्हें फांसी देते समय बड़ा आनंद होता होगा, साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं तो 3 दिन खाना भी नहीं खाता हूं, पागल जैसा हो जाता हूं। और जो मैजिस्ट्रेट सुनाने वाला जाता है वो अपने को दोष से बचाने के लिए वो पढ़ता है, बोलते अमुक जज ने और अमुक ने ये है इस पीनल कोड के अनुसार इसने फांसी की सजा सुनाई, मैं नहीं सुना रहा हूं क्योंकि मुझे भी लगनी है, सब बचना चाह रहे। और वो जज एक मैसूर स्टेट के अंदर थे, उन्होंने पहले पहले फांसी सजा सुनाई और एक क्षेत्र पर दर्शन के लिए आए कि हे भगवान मेरे से कोई गलती हुई हो तो कोई इसमें मन वचन काशे दोष निवारण हो पूजा पाठ के लिए। तो ऐसी चर्चा चली, हमने उनसे पूछा, बोले साहब हम तो वो जो कानून के अनुसार देते हमें कोई पाप लगता है क्या उसमें भी, बोले साहब यहां तो कर्ता कर्विता अनुमोदक सबके लिए है, ये बड़ी कठिनाई है हमारे धर्मशास्त्रों में, कर्ता कर्विता अनुमोदक कृत कार्यक्रम ये सब के मतलब, आपने कुछ नहीं किया, मारा नहीं पीटा नहीं, अच्छा क्या खत्म हो गया आपका, वही दोष उसको लगा, इसके लिए क्या प्रमाण, षड्यंत्र के द्वारा कोई मारने में सम्मिलित होते अनुमति मिले मारा ऐसे मारो इतना भी कहा तो उसको भी सजा होती। तो यहां बैठे हुए और आपका कोई शत्रु वहां कहीं मर गया, किसी और मर गया, बहुत अच्छा हो गया, बोले मलिन हो गया आत्मा आपका, तो ही वो 3 लोग के कोने में, बोले मर गया वो, बहुत अच्छा हुआ साहब, तुम मरोगे नहीं, तुम भी तो मरोगे एक दिन। तो इसलिए महानुभाव धर्म और धर्म तत्व ज्ञान धर्म शास्त्र ये सुनने में बड़ा मीठा लगता है, फिर इसका प्रयोग जो है वह आसान नहीं, समझे ना, प्रयोग आसान नहीं, उसका जो प्रयोग है वो बड़े कठोरता के साथ इसको यहां खोजकर और निर्वेगता के साथ हम उस क्रोध कषाय को नष्ट करने के लिए शास्त्रों में बताई हुई जो विधि है आत्मा के गुणों को समझने के बाद, उस क्रोध से नुकसान की बात समझने के बाद, जैसे नुकसान किससे होता है उस व्यापार को छोड़ देते हो, इसी प्रकार से धर्मशास्त्र जो पढ़ना है कि नुकसान का ऐसा होता है तो हमारे अपने इस क्रोध से होता है और अनंत दानवंदी क्रोध ये संसार के अंदर जीवों को लकीर जो पत्थर पर खींची जाती है वो मिटती नहीं है। इस प्रकार कम से कम आप लोग ऐसे क्रोध को तो स्थान मत दो जो अनंत संसार का कारण बने। जहां तक छोड़ सकते हो उसको छोड़ो, जहां तक छोड़ सकते हो उसको छोड़ो। तो छोड़ना अवश्य क्या, अनंत दानवंदी पर जोर दिया आचार्यों ने, क्योंकि ये मिथ्यात्व का कारण है और ये संसार का कारण। तो उत्तम शब्द यही बताया कि सम्यक दर्शन से अनंत दानवंदी क्रोध मान माया लोभ ये सभी जब छूटते सभी सम्यक दर्शन होता है। केवल क्रोध छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, हमने तो क्रोध छोड़ा बिल्कुल क्रोध नहीं करते, पर अंदर अंग में माया चार लोभ मान ये चारों बेटे भी। जैसे किसान पहले साफ करता है भूमि को, घास फूस वो हल चला के बिल्कुल, फिर जो बीज बोता है तो क्षमा का बीज तब बोया जाएगा जब वो जमीन साफ हो जाए, ये अनंतान बंदी हटा दिया जाए। अनंतान बंदी हटाते हुए यदि वैसे ही कर दोगे तो उस बीज को भी खा जाएंगे, जिसको अनंत सस्य कहते हैं संस्कृत भाषा के अंदर। जो बीज बोया वो उक्त है और अनुप्त उसको कहते हैं जो ऐसे ही बिना बोए ही बहुत से घास फूस आता वो खा जाएगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, वो भी उसके बराबर होके और वो नष्ट हो जाएगा उसके साथ। इसलिए शीत दांड के कुंपण सुंदर राखण दिन रात नहीं कत्योड़े पिके चती मात। कितनी बड़ी बात थी, एक आदमी ने तो ऐसे बोया जैसे बो के आया फसल काटने गया तो फसल कौन सा और वो कौन सा पता नहीं चल रहा है, इतनी घास उग गई। और एक आदमी वो है सारे ठीक किया जमीन को साफ सुथरा पर बीज नहीं बो पा रहे तो फसल काटने कहां कैसे काटे। इसलिए मानव भाव ये अनंतानबंदी क्रोध के कारण इस दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, संहारक अस्त्र बने जा रहे हैं और एक कुमति के अंदर इनको ढकेल दिया हमारे आचार्य। और इस कुमति के अंदर क्या बतावे, उस पाप की कोई प्रक्रिया का अंत नहीं है। पोलैंड वालों ने एक ऐसा मशीन खोजा है कि यहां जानवर खड़ा कर दो तो सब उसके बाल अलग, चमड़ा अलग, उसके खून अलग, रक्त अलग, अमुक अलग, मांस अलग, डिब्बा अलग, ये सब अपने मशीन करता है। उसकी बुद्धि देखिए आप, कुमति का कोई अंत नहीं है। तो आप इस सब बातों से बचने के लिए क्षमा भाव, केवल अंतरंग में मैंने क्षमा रखी है इतने से नहीं चलेगा, आपके खान पान भी शुद्ध होना आवश्यक है। कोई मांसाहार आदमी उस व्यवहारिक क्षमा को क्षमा क्षमा करके कहे तो नहीं हो सकता है। दयावान आदमी तो इन एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी अपने दया भाव रखता है, एकेंद्रीय जीवों के प्रति। जैसे अधिकार आपको जीने का वैसे इतर प्राणियों को भी अधिकार है। इसलिए आप लोग ये ख्याल रखिए कि हम अपने कारण किसी जीव को तिल तुष्मात्र भी नहीं हो, मन में विकल्प भी नहीं लावे, और वह विकल्प अवस्था जो है हमें दुखदायक है, और विकल्प रहित जो है वही हमारे सुख के लिए कारण है। इसलिए पहली शर्त जो दौलत राम जी ने भी लगाया कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता। श्रीमद रायचंद जी ने श्रीमद रायचंद जी में लिखा है कि दो दशा होती है मुमुक्षु, एक विचार दशा एक स्थित प्रज्ञ दशा। इस काल में स्थित प्रज्ञ दशा है ही नहीं, विचार दशा है। उन्होंने कहा कि कली काल का मुख्य काल, कली काल का मतलब स्थित प्रज्ञ दशा उसको कहते हैं। आप इन क्रोध से भाव मुक्ति थोड़ी देर के लिए क्रोध के बिना बैठ सकते हैं, पर सर्वथा उसमें स्थित अखंडता से नहीं रख सकते अपने आप। वो अखंडता में रखने की जो स्थिति है वो सात्व गुणस्थान से चलती है, उससे पहले नहीं जाती। सात्व गुणस्थान से स्थित प्रज्ञ बनता, उसमें स्थित होना, उससे विचलित नहीं होना। आप कहते हैं कि साहब रुक जाओ, बोले क्यों, बोले एक्सीडेंट हो जाएगा। आचार्य कहते हैं एक्सीडेंट हो जाए तो हड्डी जोड़ सकता है डॉक्टर, पर मन का एक्सीडेंट होने के बाद कोई जोड़ने के लिए उपाय नहीं है दुनिया में। इसलिए मन के एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कोई दुनिया में है तो क्षमा धर्म है। काई का एक्सीडेंट मन का, अर्थात मन का भी एक्सीडेंट होता है साहब। यहां भी बहुत गाड़ियां चलती है, ट्रकें चलती है बड़ी बड़ी भारी, हाँ, और वो ट्रकें जो है उसमें कुचल गया तो खत्म है। ये अंदर ट्रक चलती है, अंदर गाड़ियां चलती है, और वो बिना ब्रेक की चलती है तो और खतरनाक। ब्रेक लगाने के लिए यह क्षमा भाव। एक अफ्रीका में एक पोस्टमैन था और वो पोस्टमैन रोज डाक देने जंगलों में जाता। साहब बहुत बड़े ढलान
उसकी साइकिल को ब्रेक नहीं, परंतु ऐसे अपने कुछ भी करके जाता, उसको जाना था गरीब आदमी। तो वहां धूप के लिए बहुत घनघोर जंगल होने से 27 शेर आके उस सड़क पर बैठे हुए थे। शेर बड़े बड़े आराम से सो रहे थे, निद्रा ले बच्चे खेल रहे थे। अब ये इतने में जीप गाड़ी पीछे से आई और उन्होंने कहा, अरे रुक जा साहब, ये साइकिल को ब्रेक नहीं, कहां रुकू, कैसे रुकू। पर जाके इन शेरों के बीच में साइकिल सही गिर गया। शेरों ने ये सोचा ये कोई पकड़ में आया करके सारे भाग गए वहां से। उसके आके उन्होंने कहा था, मैं तो इस्तीफा देता हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं आज बच के आया, मुझे ब्रेक के साइकिल दो तो नौकरी करूंगा, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ब्रेक वाले साइकिल दे दो। तो क्षमा ही ब्रेक है जो मनुष्य की इस कषाय से बचाने के लिए, क्रोध से बचाने के लिए। और जिसने क्षमा भाव को अंतरंग में समझा यथार्थ रूप से, तो वह झटके कुछ हो जाए तो वहीं कहीं ब्रेक लगाए, और बिना ब्रेक की गाड़ी स्वयं भी डूब जाए कहीं गड्ढे में और दूसरे को भी डुबा दे और को भी ये जोड़ दे। तो इसलिए महान भाव की अंतरंग से जो है ये धर्म चलता है। इसलिए उत्तम क्षमा जो है वह हमने अमुक पर क्षमा कर दिया, तमुक पर क्षमा कर दिया, क्या क्षमा कर दिया, ये व्यवहारिक क्षमा है। ये तो चलती है दुनिया में, सब करते हैं, एक साथ लोक में प्रचलित है, स्कूल कॉलेज राजनीति में सब में, राजनीति वालों में तो और भी ज्यादा है। वो तो क्षण भर के अंदर बदल जाते हैं, जैसे तत्काल हाथ मिलाते और वकील इधर दोनों लड़ते रहते और फिर हाथ मिलाते, भाई साहब ठीक है ठाक है। इनमें बहुत क्षमा है, इन धर्मात्मा आदमियों से भी इतने जोर जोर से लड़ते हो, उनको मालूम है न फांसी की सजा मुझे होनी है, ना उस वकील को होनी है, होनी है उसको होनी है, तो हाथ मिलाते हो। तो महानुभाव जो व्यवहारिक क्षमा के अंदर तो आप प्रयोग करते ही, करना भी चाहिए, परंतु जो हमारे आचार्य ने उत्तम क्षमा की बात कही, वह आपके अपने आत्मा पर आज तक अपनी जिंदगी में कभी क्षमा नहीं किया, इसीलिए आपको इस नरक नारक आदि पर्याय में परिभ्रमण करने में पड़ा। दुनिया के सब पर क्षमा कर दिया, कर भी सकते हैं, परंतु इस पर क्षमा कर नहीं सकते, बिल्कुल कर नहीं सकते। किया हुआ होता तो यह जन्म ही कैसे होता, मरणी कैसे होता, दुखी कैसे भोगना पड़ता। क्षमा हमने इस पर नहीं, सब पर क्षमा कर दिया। जैसे कोई आदमी भगवान करते रहा, अरे तुम्हारी लड़की बड़ी होगी शादी कर दो, तुम्हारी बड़ी होगी कड़ी, ये कहते घूमता हो, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे घर की लड़की तो करो। तो उन्होंने कहा कि पहले यहां क्षमा अंतरंग में होगा। इसलिए महानुभाव जो उत्तम शब्द है वह सम्यक दर्शन सहित है। इसलिए इन अनंत अनुबंधी क्रोध को हमें इसलिए जानना, जैसे अंधेरे को जानने से रोशनी का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से जो अनंत अनुबंधी क्रोध है उसको आचार्य ने चार भागों में विभक्त किया, उसको इसलिए जानना है। अनंतानुबंधी उसको कहते हैं जो लकीर की पत्थर मिटती नहीं, पाषाण को। और उसके बाद प्रत्याख्यान जो है, हल चलाते हैं जब तक बारिश आके जोर से ये नहीं होगा तब तक वो साफ नहीं। उसके बाद धूल की रेखा और संग्रहण कषाय, इसमें कहते हैं जल में जो रेखा आप हाथ घुमाते जल में तो इधर मिटती जा रही इधर। इस प्रकार से वो आचार्य जब अपने शिष्य को प्रायश्चित देते हैं उस समय उनको संज्वलन कषाय होती है, इसे जैन आचार्य ने वर्णन किया। तो हमें इस उत्तम क्षमा को अपने आत्मा के अंदर धारण करने के लिए बार बार इसका चिंतन करना चाहिए। और फिर एक बात बताऊं मैं, आज क्षमा धर्म नहीं है, भूल से समझ बैठे कि आज क्षमा धर्म, आज क्षमा धर्म नहीं है, क्षमा नित्य और सतत है। ये आज कर दिया और कल से छुट्टी इसको, चलो अगले साल के लिए, ये इसका अर्थ नहीं है। ये तो आज हमें हिसाब करने का है, दिवाली का दिन कैसे, भैया दिवाला तो नहीं निकाला हमारे आत्मा का, इसे आज हिसाब करने के लिए है ये। परंतु 365 दिन क्षमा, 365 दिन क्षमा, 24 घंटे क्षमा, क्षमा ही क्षमा, प्रत्येक क्षण में क्षमा। और वो ऐसी क्षमा जो होती है वह वीतराग में भाव के अंदर ही निहित होती है, अन्यत्र नहीं हो सकती। तो आप लोग अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न के द्वारा आज की इस कषाय को मंद करने के लिए, मंदतर करने के लिए, मंदतम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ये अनंतानुबंधी से यदि हम बच गए, ये चारित्र को भी घात करते हैं और ये जो है हमारे आत्मा के गुणों को भी घात करते हैं, आत्मा के गुणों को घात करते और किसी का घात नहीं करते। इसीलिए इनको सबसे बड़े सर्वघाती माना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, प्रत्याग अपने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, और इसी प्रकार से मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्, ये जो है आत्मा के गुणों को नष्ट कर देते हैं। सर्वघाती बताए उनको, सर्वघाती, ये किसी कहीं छोड़ते बिड़ते नहीं है, सर्वघाती। और जो सम्यक प्रकृति है वो सर्वघाती नहीं, वो चल मलिन गाड़ के अंदर आते और वो साते गुण स्थान तक भी रहते और आगे चल के तो परमावगाड़ तो वहां आ जाता है। इसलिए हमें उत्तम क्षमा धारण करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, अपने जो तत्वज्ञान में प्रवेश करना है किसी को अध्यात्म में भी धर्म में भी, तो ये पहली शर्त है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने थर्मामीटर लगा के, थर्मामीटर बाहर से कोई लगा नहीं सकता, अपने ही रोज मैंने आज कितना क्रोध किया, किस पर क्रोध किया, दूसरे पर क्रोध करते हुए मलिन आत्मा हो जाता, विरमक में परिणत कार्य को लाल अकारण को लाल में जीव फंस फंस के और नाना तरीके क्रोध मान माया लोग करते रहा, क्रोध करने वाला भी मर जाता है, क्षमा करने वाला भी मर जाता है। परंतु जो क्षमा धर्म है लौकिक और पारमार्थिक, इन दोनों में उसका बहुत महत्व है। और जो क्रोध है वह राजनीति में भी और धर्म नीति में दोनों को पतन की ओर ले जाता है, ये वाजिब शिव ने बताया। तपसा ही समम राज योगक्षेम प्रपंचता समादेश पाता तन्यथा महोदय, शासक के शासन में और तपस्वी के तपस्या में थोड़ा सा भी इसका प्रमाद आ जाता है, बोले दोनों का अधक पतन कर देता है और अप्रमाद हो जाता है, तो उसका अभ्युदय अभ्युदय होता है। कितनी बड़ी बात है, योगक्षेम आप लोग पूछते हैं ना, किसी गांव का आदमी आया बोले आपका योगक्षेम कैसे है, यही तो है और क्या, अर्थात मन वचन काय सब अच्छा है कि नहीं, क्षेम का मतलब मन स्वच्छ है, शुद्ध उपयोग है, शुद्ध परिणाम है, शुभ परिणाम है। तो जो अशुभ भाव है ये क्रोध के कारण है या उद्वेग भाव है, और ये अनंत संसार के कारण होने के कारण हम कम से कम अशुभ से तो बचे, और अशुभ से बचने के लिए अनंतानुबंधी क्रोध जो है उसको निरस्त करना होगा, निशेष करना होगा, उसके तिल तुष्मात भी घातक है, अंधेरे का एक अंश भी जो है वो खतरा पहुंचाने वाला है, किसी गड्ढे में भूल गया। और वो क्षमा ढूंढना कहां में, एक बुढ़िया थी और शाम को उसकी छोटी सुई खू ढूंढती रही ढूंढती रही, अपने कहां बैठी थी वहां, एक आदमी जा रहा बोले माँ जी क्या हो गया, बोले मेरी एक छोटी सुई थी गिर गई, यहां कहां ढूंढ रही, बोले कहां ढूंढू रोशनी में ढूंढ, कहां है रोशनी, बोले इस खंबे के नीचे। तो वहां से उठ के वो खंबे के नीचे ढूंढे, म्युनिसिपैलिटी का जो खंबा था या वहां ढूंढी। दूसरा इधर से एक आदमी आया बोले क्या कर रही माँ जी, मेरी सुई खो गई, बोले कहां खोई थी बेटा, वहां खो गई थी, बोले यहां क्यों ढूंढ रही, उस आदमी ने कहा रोशनी में ही ढूंढो इसलिए मैं यहां ढूंढ रही। हम तो शास्त्रों में ढूंढते ढूंढते थक गए, पर यहां ढूंढना है हमें, वहां नहीं ढूंढना है, वहां ढूंढते तो बिता गए अनंत भाव को, अब अभी जियोगी, वहां शास्त्रों में ढूंढते ढूंढते अनंत पंच परावर्तन में घूमा, ढूंढना यहां है नहीं मिले, वो जो खोई हुई जो सुई है हमारी वो यहां मिली, शास्त्र में नहीं मिली, शास्त्र में कैसे मिली, यहां ही नहीं, वो तो दर्पण है, वो तो साधन है, साधन में नहीं मिलती, यहां मिलती। इसलिए हम भ्रम बुद्धि के कारण इस दुनिया के अंदर इस क्षमा को न समझे, और क्रोध में आनंद आता है और उससे मुड़ना बड़ा कठिन है। और 26 अवस्था में कोई ज्ञाता दृष्टा बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, स्वयं क्रोध कर रहा है, वो जान रहा है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ये भी देख रहा है मैं ये देखो सब लोग कैसे भाग दौड़ रहे हैं, ये भी जान रहा है, ये भी देख रहा है, पर उसे मुड़ नहीं रहा है, तो ज्ञाता दृष्टा बनने से होता क्या। थोड़ी देर के लिए सोचिए, साहब हमने क्रोध को अच्छे तरह से जाना, अच्छे तरह से देखा क्रोध को, पर मुड़े क्या, बोले मुड़ नहीं सके, बस इतनी बात है, नहीं मुड़ेगा तो कार वाला इधर रास्ता किधर उधर नहीं मुड़ेगा तो जाके दीवार को टकरा जाए। मोड़ना होगा जीवन को, और जब तक जीवन को नहीं मोड़ते हैं तब तक वह ज्ञाता दृष्टा बने, बोले ड्राइवर देखता है, ज्ञाता दृष्टा ड्राइवर आगे पीछे भी देखता हो, जैसे पीछे ट्रक आ रही है भी देखता है उस दर्पण में, और आगे उधर से कोई गाड़ी आ रही है भी देखता है, पर उससे मुड़ता नहीं, और जब तक नहीं मुड़े तो कैसे काम चले बताओ। तो ये आवश्यक है परम कि मनुष्य के जीवन के अंदर कि हमें मुड़ना चाहिए, और जो मुड़ गया वही जीवन से अपने उन्नतशील हो गया, जो मुड़ा नहीं है वो जीवन के अंदर यहीं डूब जाएगा। इसलिए कि क्रोध कर रहा है जान रहा मैं क्रोध कर रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं जान रहा है, ये बुरा कर रहा हूं जान रहा है, ये सब जानते हुए उससे जितना उड़ गया उतना लाभ है, और मोड़ना ही आसान काम नहीं, मुड़ना जो है अपने जीवन को जैसे बेत होती है वो मुड़ती है चाहिए जिधर घुमाओ, इसी प्रकार से जो मुड़ गया अपने जीवन को मोड़ लिया उस क्रोध से अनंतानुबंधी से वह पार हो जाएगा। इसलिए मान भाव तो इसके पहले उसको मिथ्यात्व